आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैन-उल-अक़वामी ट्रेड शो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपये मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 MBBS सीटों और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के इजाफे के लिए मरकज के जेर एहतमाम स्कीम को मंजूरी दी है, जिस पर 15,034 करोड़ रुपये की लागत आएगी। CBSE ने अगले साल 17 फरवरी से होने वाले 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात की उभरी तारीखों का ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकार मुनासिब आईनी तहफ़ुज़ात फराहम करके लद्दाख के लोगों की उमंगों के तई पुरअज़्म है। और क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैन-उल-अक़वामी तिजारती मेले 2025 का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर तकरीब से खिताब करेंगे। इस दौरान रियासत की गोनागुन दस्तकारी रिवायात, खानों, सकाफत, जदीद सनतों, जामे MSMEs और उभरते हुए कारोबारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बैन-उल-अक़वामी तिजारती मेले के दौरान दस्तकारी, टेक्सटाइल्स, चमड़े, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष समेत दीगर अहम शोबों की नुमाइंदगी की जाएगी। ये तिजारती मेला 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम राजस्थान जाएंगे, जहां वो 1,22,100 करोड़ रुपये लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वो बांसवाड़ा में अवामी तकरीब से खिताब करेंगे और PM कुसुम मुस्तफदीन से बातचीत करेंगे। वजीर आजम अनुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के माही बांसवाड़ा राजस्थान एटमी पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 42,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
माही बांसवाड़ा राजस्थान एटमी पावर प्रोजेक्ट रियासत में दूसरा एटमी पावर प्रोजेक्ट होगा, जिससे बिजली की पैदावार को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी आज कई ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे, जिससे माहौलियात के लिए साजगार मुल्क की तवानाई की सलाहियत में खादिर खा इजाफा हो सकेगा। आबी वसाइल के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से हजारों गांव और कस्बों के लिए पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। साथ ही किसानों को आबपाशी के लिए भी मुनासिब मकदार में पानी मिल सकेगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और शाहराहों के फरोग के प्रोजेक्टों से बिला रुकावट और महफूज ट्रांसपोर्ट निजाम को फरोग हासिल होगा। रियासत में 3 नई रेल खिदमत के आगाज से राजस्थान और दीगर शिमाली रियासतों के दरमियान कनेक्टिविटी मजीद बेहतर हो सकेगी। बांसवाड़ा से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस चार रोजा तकरीब के दौरान फूड प्रोसेसिंग के शोबे, गजाई पायदारी और सेहत बख्श और नामियाती खुराक की पैदावार में भारत की ताकत का मुजाहरा होगा। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि तकरीब के दौरान फूड प्रोसेसिंग के शोबे में भारत के इनकलाबी सफर को पेश किया जाएगा और बैन-उल-अक़वामी इश्तराक और सरमायाकारी के मौके को फरोग दिया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
गजा से मुतालिक आलमी सतह की इस तकरीब में 21 से ज्यादा ममालिक, 21 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके और 10 मरकजी वजारतें हिस्सा ले रही हैं, जिससे ये भारत के फूड प्रोसेसिंग शोबे की शराकत दारी की सबसे बड़ी तकरीब बन जाएगी। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम PMFME के तहत फूड प्रोसेसिंग के शोबे के 26,000 मुस्तफिदीन को 770 करोड़ रुपए की कर्जा जाती इमदाद भी फराहम की जाएगी। इस दौरान CEO, गोलमेज, तकनीकी इजलास, नुमाइश और मुतादित कारोबारी मुकालमों समेत तकरीब में कई इजलास मुनाकिद होंगे। इस दौरान हर मखसूस थीम पर मबनी 14 पवेलियन लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए 1,00,000 अफराद के आने का इम्कान है। दिल्ली से सोमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुतालिक मल्टी मॉडल ICT प्लेटफॉर्म प्रगति की 49वीं मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे के 8 अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया, جو کانکنی، ریلویز، آبی وسائل، صنعتی راہداریوں اور بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے اگلے 3 سال کے دوران موجودہ سرکاری میڈیکل کالجوں اور اداروں میں 5023 ایم بی بی ایس سیٹوں اور 5000 پوسٹ گریجویٹ سیٹوں کے اضافے کے لیے مرکز کے زیر اہتمام اسکیم کے تیسرے مرحلے کو منظوری دی ہے۔ اس قدم سے انڈر گریجویٹ میڈیکل صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، اضافی پوسٹ گریجویٹ سیٹیں قائم ہونے سے ماہر ڈاکٹروں کی دستیابی میں اضافہ ہوگا اور سرکاری میڈیکل اداروں میں نئے مخصوص شعبے شروع کیے جا سکیں گے۔ ساتھ ہی اس قدم سے طلبہ کو بھارت میں طبی تعلیم حاصل کرنے کے مزید مواقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ عالمی معیارات کے مطابق طبی تعلیم اور تربیت کا معیار مزید بہتر ہو سکے گا۔ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات ملک کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو سہل بنانے کی جانب اہم قدم ہیں۔ اب عوام جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو اس مہینے کی 22 تاریخ سے نافذ ہو چکی ہیں۔ نئے ڈھانچے کے تحت متعلقہ جی ایس ٹی کونسل نے 5%, 12%, 18% اور 28% کے 4 زمروں والے ٹیکس نظام کو اب 5% اور 18% کے 2 زمروں میں سہل بنا دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے کہا ہے کہ کئی طرح کی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس شرح کم ہونے سے لوگوں کو بڑی راحت مل رہی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت سرکار نے کوڑے کچرے کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی خدمات پر جی ایس ٹی 12% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ اس سے آلودگی سے پاک ماحول قائم ہو سکے گا اور صنعتی علاقوں میں پائیدار ترقی کو تقویت حاصل ہوگی۔ جی ایس ٹی شرحیں کم ہونے سے کوڑے کچرے کو الگ الگ کرنے، پلانٹ چلانے اور رکھ رکھاؤ جیسے شعبوں میں گرین ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ کسانوں کی مدد کرنے اور شمسی پمپ کو زیادہ کم خرچ بنانے کے لیے جی ایس ٹی کونسل نے شمسی اور ونڈ آلات وغیرہ پر ٹیکس شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے۔ اس طرح سولر کوکرز، سولر پاور جنریٹرز، ونڈ ملز اور اسی طرح کے بجلی کے جنریٹر سمیت مختلف آلات اور سامان پر اب صرف 5% ٹیکس لگے گا۔ دلی سے شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے اگلے سال ہونے والے 10ویں اور 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کے لیے عبوری تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ امتحانات اگلے سال 17 فروری سے شروع ہوں گے۔ سی بی ایس ای نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسکولوں کی جانب سے امتحان دینے والے امیدواروں کی قطعی فہرست پیش کیے جانے کے بعد حتمی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ ایک تعلیمی سال میں 10ویں کلاس کے بورڈ امتحانات 2 بار کرائے جائیں گے۔ عمر داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار سونم وانگچک کے مطالبے کے سلسلے میں لے اور کرگل جمہوری اتحاد کے ساتھ سرگرمی سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ ان کا یہ مطالبہ 6ٹے شیڈیول اور لداخ کو ریاست کا درجہ دینے سے متعلق ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کے ساتھ ساتھ ذیلی کمیٹی کے باضابطہ وسیلوں کے توسط سے کئی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈروں کے ساتھ کئی غیر رسمی میٹنگوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس طریقہ کار کے ذریعے مذاکرات کے عمل کے خوش آئند نتیجے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح لداخ کے درجہ فہرست قبیلوں کے لیے ریزرویشن 45% سے بڑھا کر 84% کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کونسلوں میں خواتین کے لیے 1/3 ریزرویشن بھی فراہم کیا گیا ہے اور بھوتی اور پرگی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس عمل کے ساتھ 1800 عہدوں پر بھرتی کا کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق لداخ کے رہنماؤں کے ساتھ آج اور کل کچھ میٹنگیں ہونے والی ہیں، جبکہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کی اگلی میٹنگ اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ہونا ہے۔ وزارت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پرانے اور اشتعال انگیز ویڈیوز سرکولیٹ نہ کریں۔ ادھر 6ٹے شیڈیول اور لداخ کے لیے ریاست کے درجے کے مطالبے پر پرتشدد مظاہروں کے بعد لیہ میں بندشیں نافذ کی گئی ہیں۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے تشدد کے واقعات کی سخت مذمت کی ہے اور امن و سکون قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ لیہ میں پرتشدد جھڑپوں کے تناظر میں بندشیں نافذ کیے جانے کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے۔ رات میں کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ لیہ کے ڈپٹی کمشنر ڈومیل سنگھ ڈونگ نے لیہ کے ایس ایس پی کے ہمراہ کل رات میڈیا کو حالات کی جانکاری دی۔ انہوں نے سبھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ امن و سکون برقرار رکھیں اور بی این ایس ایس 2023 کے تحت بندشوں پر عمل کریں۔ सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार बड़ी तब्दीली लाने और तरक्की के लिए अनथक काम कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खसूसी सिलसिले में आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार दिफाई कारकर्दगी में इख्तिरा के जरिए भारत के दिफाई इख्तिराई निज़ाम को किस तरह मुस्तहकम बना रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 साल के दौरान दिफाई शोबे में इख्तिरा पर खुसूसी तवज्जो दी है। इख्तिरा का इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से अप्रैल 2018 में दिफाई महारत के लिए इख्तिरात आईडेक्स पहल का आगाज किया गया था। इस पहल के तहत तहकीक और तरक्की के इदारों, तालीमी इदारों, सनतों, स्टार्टअप और इनफरादी इख्तिराकारों को शामिल करके तकनीकी तरक्की को फरोग दिया गया। महाबलीपुरम में डिफेंस एक्सपो और आईडेक्स का आगाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी इख्तिरात तहकीक और तरक्की के लिए हुकूमत के तआवुन की अहमियत को उजागर किया।
गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस सेक्टर। आवर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप हैज बीन रिलीज टू हेल्प द इंडस्ट्री इन प्लानिंग एंड इनिशिएटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन अरेंजमेंट।
MSMEs, स्टार्टअप, इनफरादी इख्तिराकारों को शामिल करके आईडेक्स के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की तरक्की में तआवुन के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की इमदादी रकम फराहम की गई है। मुसल्ला अफवाज ने आईडेक्स के तआवुन से जारी स्टार्टअप और MSMEs से 2,400 करोड़ रुपए मालियत की 43 अशिया खरीदी हैं। गुज़श्ता 11 साल में की गई तब्दीलियों की बदौलत भारत में इख्तिरा का माहौल पैदा हुआ है। आज भारत दिफा के शोबे में खुद इन्हेसारी के हुसूल की समत में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
तकरारात से मुतालिक काबीना कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जनरल अनिल चौहान की मुलाजिमत में तौसी को मंजूरी दे दी है। वो अगले साल 30 मई तक या मजीद अहकाम जारी होने तक भारत के सरकार में फौजी उमूर के महकमे में सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे। जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया था। कोलकाता और उससे मुतसर इलाकों में बारिश से वाबस्ता वाकयात में जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। कोलकाता और मुजाफाती इलाकों में पानी की सतह कुछ कम हुई है, तहम कुछ इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। क्रिकेट में भारत दुबई में सुपर फोर मरहले के एक मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इससे कबल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा और भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, मरकजी काबीना के अहम फैसले, बिहार के लिए 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, काबीना ने मेडिकल कॉलेजों में PG और UG सीटों में इजाफे की मंजूरी दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और कुछ दीगर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ट्रेन से मथुरा और वृंदावन जाएंगी। रोजनामा इनकलाब ने अक्वामे मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी काउंसिल के 60वें इजलास के इनेकास से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। अखबार लिखता है, भारत ने पाकिस्तान की कलई खोलते हुए उसे जम्मू कश्मीर के नाजायज कब्जे वाले इलाकों को फौरन खाली करने की सलाह दी है।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैनुल अक्वामी ट्रेड शो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 MBBS सीटों और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के इजाफे के लिए मरकज के जेरे एहतमाम स्कीम को मंजूरी दी है, जिस पर 15,034 करोड़ रुपए की लागत आएगी। CBSE ने अगले साल 17 फरवरी से होने वाले 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात की उबूरी तारीखों का ऐलान किया है। वजारत दाखला ने कहा है कि सरकार मुनासिब आईनी तहफ़ुज़ात फराहम करके लद्दाख के लोगों की उमंगों के तई पुरज़्म है। और क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुँच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।